9 सितंबर बुधवार के नमस्कार भारत में स्वागत है आपका। मैं हूं फैसल मोहम्मद अली। सीरिया और दूसरे अरब देशों से यूरोप जाने वाले लोगों का संकट गहराता हुआ। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा, पूरे यूरोपीय संघ के देशों को लेनी होगी शरणार्थियों की जिम्मेदारी।
Ich bin selten so überzeugt innerlich davon.
क्या वजह हो सकती है मुंबई पुलिस कमिश्नर के अचानक हुए तबादले के पीछे, और बिहार एनडीए गठबंधन का फूट आया सामने। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने साथी दल के रामविलास पासवान पर साधा निशाना।
यदि शेड्यूल कास्ट की बात कहते हैं तो शेड्यूल कास्ट के सामने अनेक समस्या मुंह बाए खड़ी थी, किसी दिन एक लफ्ज भी उन्होंने निकाला।
खबरें खेल जगत से भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार अमल चौधरी से। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी ने हंगरी को चेताया है कि इस सप्ताह के अंत तक वहां ग्रीस और सर्बिया से 40,000 शरणार्थी आ सकते हैं। एजेंसी के स्थानीय कोऑर्डिनेटर विंसेंट कोचेल ने हंगरी के अधिकारियों को पंजीकरण और स्वीकृति प्रक्रियाओं को बेहतर करने को कहा है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र अपनी तरफ से इन शरणार्थियों को टेंट, रजाई और ज़रूरत की अन्य चीज़ें मुहैया कराएगा। उन्होंने यह भी कहा कि हंगरी का कानून अवैध बॉर्डर क्रॉसिंग को लेकर बहुत ही सख्त है, जिससे मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। तुर्की में प्रदर्शनकारियों ने मुख्य कुर्द पार्टी समर्थक एचडीपी के प्रमुख कार्यालय पर हमला किया। अंकारा में मौजूद पार्टी की बिल्डिंग को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। वहीं पार्टी का कहना है कि देश भर में उनके अन्य कार्यालयों को भी निशाना बनाया जा रहा है। तुर्की में सेना और कुर्द उग्रवादी आंदोलन पीकेके के बीच कई हिंसक झड़पें हो चुकी हैं। वहीं प्रधानमंत्री अहमद दावूतोलू ने मीडिया और राजनीतिक पार्टियों पर हो रहे हमले की निंदा की है। कीनिया की राजधानी नैरोबी में स्थित एक शॉपिंग मॉल में एक व्यक्ति ने विस्फोटक से भरे बैग के साथ घुसने की कोशिश की। हालांकि वहां मौजूद सुरक्षा गार्डों ने उसे पकड़ लिया और उसमें मौजूद यंत्र को पुलिस ने निष्क्रिय कर दिया। इस यंत्र में एक बैटरी और मोबाइल फ़ोन के साथ कुछ विस्फोटक जुड़ा हुआ था। इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के प्रवक्ता जॉर्ज केनोटी ने कहा कि पकड़े गए सभी लोग कीनियाई नागरिक हैं। उन्होंने कहा, तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। फिलहाल जो सामान संदिग्ध के पास से मिला है उसका भी बैलिस्टिक परीक्षण चल रहा है, इसलिए उस पर भी हम कुछ स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते। हालांकि वो बहुत ही छोटा था और उसे बहुत सारे तारों से लपेटा गया था। पुलिस के प्रवक्ता जॉर्ज किनोटी। 2 साल पहले नैरोबी के वेस्टगेट मॉल में चरमपंथी संगठन अल शबाब ने हमला किया था, जिसमें कम से कम 67 लोगों की मौत हो गई थी। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान में होने से इनकार किया है। रेडियो पाकिस्तान के अनुसार उन्होंने मंगलवार को इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत में कहा कि भारत ने अगर कोई दुस्साहस किया तो इसका करारा जवाब दिया जाएगा। अजीज ने यह भी कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच तभी बातचीत होगी जब एजेंडे में कश्मीर को शामिल किया जाएगा। पिछले महीने चीन के निर्यात और आयात में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। अगस्त महीने में एक साल पहले के मुकाबले चीन के निर्यात में जहां 5.5% की गिरावट आई है, वहीं आयात में 13.8% की कमी दर्ज की गई है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि चीन का मासिक ट्रेड सरप्लस अगस्त में एक महीने पहले के मुकाबले 40% बढ़ गया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी रेडियो के सुबह का कार्यक्रम नमस्कार भारत आप रेडियो, मोबाइल और हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर साथ साथ सुन रहे हैं। सबसे पहले बात अरब देशों और यूरोप की, खास तौर पर सीरिया से यूरोप को जाने वाले प्रवासियों की। लंबे वक्त से लड़ाई झेल रहे सीरिया और अरब के दूसरे देशों से भागकर यूरोप खासतौर पर जर्मनी पहुंचने की कोशिश करने वाले लोगों की संख्या लाखों में पहुंच गई है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि साल ही कम से कम 4 लाख लोग उन मुल्कों से यूरोप पहुंचेंगे। मुश्किल यह है कि कई यूरोपीय देश जैसे ग्रीस मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं और नहीं चाहते कि उनके घर नए मेहमान आए। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्ट का साथ सुने अमल चौधरी से।
संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त एंटोनियो गुटेरिश ने शरणार्थियों के लिए यूरोपियन संघ के देशों को बेकार और अव्यवस्थित शरण प्रणाली के लिए जिम्मेदार ठहराया है। दूसरी तरफ अधिक शरणार्थियों को स्वीकार करने का विरोध कर रहे स्पेन और पोलैंड फिलहाल और अधिक शरणार्थियों को पनाह देने के लिए तैयार हो गए हैं। पेरिस में आयोजित एक प्रेस वार्ता में गुटेरिश ने कहा,
इट इज क्लियर दैट दिस इज अ सीरियस क्राइसिस, बट फॉर मी इट इज आल्सो क्लियर दैट इफ यूरोप वुड बी प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड इट वुड बी अ मैनेजेबल क्राइसिस।
ये तो साफ है कि ये एक बहुत ही मुश्किल स्थिति है, लेकिन ये भी साफ है कि अगर यूरोप सुनियोजित तरीके से इसका सामना करता तो चीजें नियंत्रण में आ सकती थी। हम बात कर रहे हैं हर रोज 4,000 से 5,000 शरणार्थियों की इस यूनियन में आने की, जहां पहले से ही करीब 51 करोड़ लोग रह रहे हैं। एंटोनियो गुटेरिश के शब्द। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने भी कहा कि जितने भी लोग यूरोप पहुंच रहे हैं वो सभी शरणार्थी हैं और उनकी मदद हर हाल में की जानी चाहिए। बान की मून के प्रवक्ता स्टीफन दुजेरिक ने कहा,
Austria, the Czech Republic, Germany, Greece, Hungary, Poland and Slovakia to discuss the arrival of refugees and migrants in Europe.
महासचिव ने ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, पोलैंड और स्लोवाकिया समेत अन्य यूरोपीय देशों के प्रमुखों से इस मामले पर बात की है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये सभी यूरोपीय देशों की व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी है कि वो शरणार्थियों की मदद करें। बान की मून के प्रवक्ता स्टीफन दुजेरिक। वहीं जर्मनी का कहना है कि वो शरणार्थियों की बढ़ती संख्या से निपट सकता है। जर्मनी के वाइस चांसलर सिगमर गैब्रियल ने कहा कि उनका देश अगले एक साल में 10 लाख लोगों को शरण देने में समर्थ है। वहीं यूरोपियन कमीशन ने शरणार्थियों को यूरोपियन यूनियन से कहीं और स्थानांतरित करने की योजना बनाई है, जिसका जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने समर्थन किया है। बर्लिन में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा,
Ich bin selten so überzeugt innerlich davon, dass dies eine Aufgabe ist, die über die Zukunft auch Europas.
मेरा मानना है कि ये एक ऐसा मामला है जो यूरोप का भविष्य तय करेगा। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त हम पर हैं और हम केवल ये नहीं कह सकते कि सुनो, सीरिया बहुत दूर है, इसलिए हमें उसकी परेशानी से कोई मतलब नहीं। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल। इससे पहले ब्रिटेन भी शरणार्थियों की मदद की बात कर चुका है। ब्रिटानवी प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा कि अगले 5 साल में उनका देश 20,000 शरणार्थियों को शरण देगा।
इस मामले पर आज यानी बुधवार को एक बैठक हो रही है, जिसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि प्रवासियों के साथ क्या करना। अब रुख भारत की तरफ। इस बार बिहार को जीतने का दावा करने वाले एनडीए गठबंधन में मुख्यमंत्री के तो कई दावेदार थे ही, अब एक पार्टी का नेता दूसरे दल के प्रमुख पर निशाने लगा रहा है, वो भी खुलेआम। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने साधा निशाना लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान पर। पटना से मनीष शांडिल्य।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने आज लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान पर जबरदस्त हमला किया। बिहार के नए नवेले राजनीतिक दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के अध्यक्ष मांझी ने ये आरोप पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए। हालांकि शुरुआत में उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को निशाने पर लिया, लेकिन इन दोनों पर मांझी ने जो भी कहा उसमें ज्यादा कुछ नया नहीं था। इसके बाद मांझी ने आरोपों के तीर का रुख अपने गठबंधन एनडीए के सहयोगी रामविलास पासवान की ओर मोड़ दिया।
हम उनको राष्ट्रीय नहीं, हम अंतरराष्ट्रीय नेता मानते हैं, लेकिन वो जो कहे दुखद बात क्या कि जीतन मांझी अभी ट्रायल में है, क्या अर्थ है उनकी, क्या भावना है, सामाजिक कार्यकर्ता, इवन मुख्यमंत्री का भी कुछ दिन काम करने का मौका मिला, तो क्या ये ट्रायल पीरियड है।
इसके बाद तो मांझी ने रामविलास पर आरोपों की झड़ी ही लगा दी।
यदि शेड्यूल कास्ट की बात कहते हैं तो शेड्यूल कास्ट के सामने अनेक समस्या मुंह बाए खड़ी थी, किसी दिन एक लफ्ज भी उन्होंने निकाला और दलितों का नेता होने का वो हम भर दिए। आपको ऑनर के साथ हम कहना चाहते हैं, आप अंतर्राष्ट्रीय नेता बन जाइए, लेकिन जो कार्य पद्धति आपकी है कि बेटा और भाई से अलग नहीं हो रहे हैं।
लोक जनशक्ति पार्टी ने मांझी के इन आरोपों को दुर्भाग्यपूर्ण कहा है। पार्टी के प्रदेश इकाई के प्रवक्ता ललन कुमार चंद्रवंशी का कहना है कि रामविलास पासवान न केवल दलितों बल्कि पिछड़ों और गरीबों के भी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं।
जीतन राम मांझी जी बहुत सीनियर मोस्ट लीडर हैं और गठबंधन में हैं। गठबंधन को देखते हुए उनको इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए जिससे कि गठबंधन पर इसका असर पड़े, कि परिवारवाद का ये सब कहना अच्छे बात नहीं है। और रामविलास पासवान आज मुख्यमंत्री नहीं रहते हुए भी आज पूरे देश के गरीबों का, दलितों का, शोषितों का ये नेता आदमी बन के रहा।
जीतन राम मांझी के संवाददाता सम्मेलन से यह साफ हो गया है कि बिहार में एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जानकारों का मानना है कि यह पूरी कवायद गठबंधन में खुद को बड़ा दल साबित करने और ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने की है। मनीष शांडिल, पटना।
यह भी कहा जा रहा है कि दलित नेतृत्व की कमान कौन संभालेगा बिहार में, इसका झगड़ा है ये। और अब चलते हैं भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर की तरफ, जहां कि आपको याद होगा कि सेना ने अपने 2 अफसरों समेत 6 जवानों को मछिल फर्जी मुठभेड़ मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। वर्ष 2010 में उत्तरी कश्मीर के नांदिहाल में 3 युवकों को सेना ने सीमा पर ले जाकर गोली मार दी थी और बाद में उन्हें आतंकवादी बताकर पेश किया गया था, लेकिन जांच में मामला कुछ और ही निकला। मामले में दोषियों को सजा सुनाए जाने के बाद कश्मीर के लोग क्या महसूस करते हैं, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी माजिद जहांगीर ने स्थानीय लोगों से बात की।
ऐसा होना चाहिए था, जिन लोगों ने ये घिनौना जुर्म किया था इसके मुर्तकिबीन को ये सजा मिलनी चाहिए थी। हालांकि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते के मिजाक, इसमें बड़ी ताखीर हुई। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, ये सजा का ऐलान जो हुआ कोर्ट मार्शल के नतीजे में वाकई एक अच्छा पैगाम है। देखना है कि दीगर जो इस तरह के मामला है फर्जी झड़पों के, तो उनमें जो मुलविस लोग हैं, सिक्योरिटी के एहलकार हों या कोई और हो, उनके साथ क्या रवैया अख्तियार किया जाता है।
ये सिर्फ बहतान है, कश्मीरी लोगों को वर्गलाने की एक कोशिश हो रही है। आज तक जितने भी केसेस यहाँ पर हुए हैं, आज तक क्यों नहीं, ये तो परसों का केस है, उससे पहले तो आर्मी ने जो यहाँ पर रेप केसेस किए हैं उनका तो कोई फैसला आज तक नहीं आया, मर्डर केस किए हैं उनका तो कोई फैसला नहीं आया। जैसे हाथी के दांत दिखाने के और रहने और, ये वही तरीका है इन लोगों का और कोई मकसद नहीं है इसका।
मसरत हो रही है इंसानी जानों का बेजा ज़िया करने वाले मुजरिमों के लिए कानून ने लगता है अपना काम निभाया। जहाँ तक मेरा सोचना है ये सजा उनके लिए नाकाफी है। हक बात तो ये है कि उनको सजाई मौत मिल जानी चाहिए थी। ये कानून का दोहरा मियार लगता है क्योंकि मोहम्मद अफजल गुरु को पार्लियामेंट हमले के इल्जाम में सजाई मौत सुनाई गई है। हालांकि सही बात ये भी है कि वो पार्लियामेंट हमले में बरह रास्त मुलविस नहीं था।
ये थे कश्मीर से कुछ आवाजें। और कश्मीर से चलते हैं मध्य भारतीय राज्य मध्य प्रदेश, जहां व्यापम घोटाले में घिरे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब अपनी पर्सनल ब्रांडिंग में जुट गए हैं, यानी कि अपनी छवि चमका रहे हैं। एक तरफ वो रेडियो में विज्ञापन के जरिए किसानों को खेती की सलाह दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके नाम का पानी शिव नीर भी अब भोपाल वालों की प्यास बुझा रहा है। पेश है भोपाल से शुरे न्याजी की रिपोर्ट।
व्यापम मामले पर आरोपों का सामना कर रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब ब्रांडिंग के जरिए अपनी इमेज को सुधारने में लगे हैं। प्रदेश सरकार ने सबसे पहले एक एजेंसी को ठेका दिया जो इस बात पर काम कर रही है कि किस तरह शिवराज सिंह चौहान की छवि को बेहतर बनाया जाए। मेडिसिन इंडिया नाम की एक कंपनी ने सरकार के साथ अपने करार के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। लेकिन हाल ही के दिनों में शिवराज सिंह चौहान ऐसी कई चीजें कर रहे हैं जिससे पता चलता है कि वो निजी तौर पर अपनी छवि सुधारना चाहते हैं। हर रोज शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के एफएम रेडियो पर विज्ञापनों में किसानों को सोयाबीन की खराब हो रही फसल पर सलाह देते सुने जा सकते हैं। वहीं भोपाल में अब शिव नीर नाम से लोगों को मुफ्त आरओ वाटर भी उपलब्ध कराया जा रहा है। भाजपा के प्रवक्ता हितेश वाजपेयी दावा करते हैं कि मुख्यमंत्री का नाम जुड़ने से इन चीजों की विश्वसनीयता बढ़ जाती है।
मुख्यमंत्री अपने आप में एक मध्य प्रदेश में बड़ा ब्रांड है, लगभग 10 से 11 वर्ष उनको मुख्यमंत्री काल के हो गए हैं, तो स्वाभाविक है उनकी साख जब किसी से जुड़ती है तो जनता भी उसमें उसकी स्वीकार्यता बढ़ती है। जैसे शिवनीर को ही यदि हम लें तो शिवराज जी का नाम जुड़ते ही मुझे लगता है कि वो जो पानी है उसकी साख बढ़ जाती है, जनता में उसका विश्वास बढ़ता है।
लेकिन कांग्रेस इसे गलत परंपरा मानती है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता के मिश्रा कहते हैं,
प्रदेश के 65% गांव में आज भी शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो ऐसी नौटंकियों के माध्यम से मुख्यमंत्री जनता की प्यास बुझाएंगे या अपनी ब्रांडिंग की राजनीतिक प्यास? और यदि मुख्यमंत्री को भगवान शिव से आस्था है तो वे भगवान शिव का अपनी जटा से गंगा निकलने वाला फोटो विज्ञापन में लगवाए, न कि व्यापम घोटाले में बदनाम शिवराज का।
राजनीतिक विश्लेषक रशीद किदवई कहते हैं,
शिवराज सिंह चौहान जो है वो व्यापम के मामले से दबने या पीछे हटने वाले नहीं है। ये भी कहा जाता है कि फॉर्मिगेशन की एजेंसी वगैरह होती है उससे उनकी बीच बिल्डिंग से काम किया जा रहा है, और एक तरीके से उनकी जो केंद्रीय लीडरशिप है उनकी पार्टी की या जो भाजपा सरकार की उसमें भी थोड़ा सहमत का खेल चल रहा है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने मंसूबों में कितने कामयाब साबित होते हैं ये बताना शायद मुश्किल है, लेकिन ये बात साफ है कि मुख्यमंत्री हर वो चीज अपनाना चाहते हैं जो उन्हें प्रदेश में फिर से मजबूती के साथ खड़ा कर सके।
ये थे भोपाल से शूरे न्याजी। मुंबई के पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया के अचानक तबादले को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं। राकेश मारिया चर्चित शीना बोरा हत्याकांड की जांच खुद कर रहे थे, हालांकि कहा गया कि हत्याकांड की जांच की जिम्मेदारी अभी भी उन्हीं के पास रहेगी। हमारे सहयोगी निखिल रंजन ने पंजाब के पूर्व पुलिस प्रमुख की इसके केएस ढिल्लों से पूछा कि उन्हें क्या लगता है इस पूरे मामले में।
बड़ा पुराना प्रिंसिपल है कि टॉप मोस्ट ऑफिसर जो होते हैं वो कभी खुद इंटरोगेशन नहीं करते हैं ना ही तो खुद इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उनका काम भी नहीं होता ये क्योंकि और बहुत सारे काम होते हैं उनको। जो इन्वेस्टिगेटर काम है उनको काम करना चाहिए, उनको एडवाइस कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं, और अगर कोई पॉसिबिलिटी है कि दे आर गोइंग रॉन्ग तो उनको करेक्ट करना चाहिए। पुलिस कमिश्नर बॉम्बे तो बड़े बिजी पोस्ट है, असली रीजन क्या है उसका तो मालूम नहीं, बट ऑन द फेस ऑफ इट इट वॉज नॉट फॉर हिम। ये तो अखबार में पहले हो भी चुका है, बल्कि माई बैचमेट जूलियो हैड ऑल्सो प्रोबेबली रिटर्न टू दी टेकन अप दिस केस विद द चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाईकोर्ट के बारे में इतनी सारी चीजें नहीं छपनी है। इन्वेस्टिगेशन इज अ प्रोसेस विच इज लॉन्ग प्रोसेस which takes time and it must be done in a way that the media is not involved it from day to day from hour to hour basis.
ये बात भी बहुत हो रही थी कि मीडिया ट्रायल हो रहा है इस केस का, लेकिन मीडिया तक बातें कहीं ना कहीं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से ही पहुंच रही थी।
नहीं करना चाहिए, तो बात पक्की है कि जो भी आपको पुलिस का जो मैंडेट है वो ये है कि आप इन्वेस्टिगेट करो, उसमें क्लूज करो, एविडेंस कलेक्ट करो और केस चार्जशीट करो, कोर्ट में जाएगा कम, और अखबारों से ज्यादा शेयर करने की जरूरत होती नहीं है। वो पहले तो ऐसा एक रूल ही होता था कि बात नहीं कर सकते। एनीवे ये भी था कि उन दिनों में इतना मीडिया होता भी नहीं था।
गृह सचिव से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि ऐसा ट्रांसफर इसलिए किया गया क्योंकि जल्दी ही जो है वो मुंबई में गणेश पूजा शुरू होने वाली है और उस दौरान इनका ट्रांसफर ड्यू होता तो उस समय चेंज ऑफ गार्ड करना थोड़ा मुश्किल होता और नए जो आएंगे उनके लिए ज्यादा परेशानी भरा होता। तो ये बात लगती है आपको कि बहुत इम्पोर्टेंट है?
नहीं, मुझे नहीं लगती, फ्रेंकली मुझे नहीं लगती। बहाने तो बहुत सारे हो जाते हैं, असली बात तो वही है कि देर इज कोई ना कोई ऐसी बात है जिससे मारिया आज या तो एक्सीड कर रहे थे अपनी अथॉरिटी या कोई गलत डायरेक्शन में जा रहे होंगे या कोई शिकायत हुई होगी। मेरा ख्याल है उनकी बाद में ट्रांसफर हो जाती है, ऐसी जरूरी नहीं होता है। उनकी प्रमोशन होने वाली थी और प्रमोशन हो के उसी जॉब में रहने का कोई नई बात नहीं है, बहुत सारे लोग प्रमोशन हो के वही जॉब करते रहते हैं कुछ दिनों तक।
कुछ दिन पहले ये भी खबर आई थी कि उन्होंने ललित मोदी से लंदन में मुलाकात की थी।
That was also inappropriate. उन्होंने उसका कोई रीजन वगैरह तो दिए थे, लेकिन ये आमतौर पे किया नहीं जाता कि लंदन जाके बात करो या लंदन आप जाओ तो किसी ऐसे आदमी से बात करो या उस पे लंच पे मिलो या ऐसा। दिस इज वेरी वेरी अनयूजुअल, इट इज अगेंस्ट द ट्रेडिशन ऑफ सीनियर पुलिस ऑफिसर्स।
और अब देखते हैं अखबार क्या कह रहे हैं। अमल चौधरी, अखबारों पर नज़र डाली आपने?
जी फैजल जी, आज की अगर मुख्य खबरों की बात करें तो सभी अखबारों में मुंबई के अभी जो मान्य हमने खबर चलाई है उसी की सुर्खियां हर तरफ छाई हुई हैं। अंग्रेज़ी अखबारों की बात करें तो हिंदुस्तान टाइम्स का शीर्षक है मुंबई के पुलिस प्रमुख को शिफ्ट किया गया लेकिन शीना का केस वही देखेंगे। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है मुंबई के शीर्ष पुलिस वाले को हटाने पर हल्ला। द स्टेट्समैन ने लिखा है मारिया को मुंबई पुलिस के प्रमुख पद से हटाया गया। वहीं द हिंदू ने भी इसी खबर को लिया है लेकिन उसकी मुख्य खबर कुछ और है। खबर का शीर्षक है सऊदी राजनयिक पर दो नेपाली महिलाओं के साथ दुष्कर्म का आरोप। वहीं इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो उन्होंने भी मारिया की खबर को ही प्रकाशित किया है लेकिन उन्होंने राजनयिक वाली खबर को जो है उसे अपना मुख्य खबर बनाया है और खबर का शीर्षक दिया है सऊदी राजनयिक के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज, पुलिस ने महिला और उसकी बेटी को उसके घर से छुड़ाया। वहीं हिंदी अखबारों का रुख करें तो प्रधानमंत्री की भारतीय उद्यमियों और बैंकरों के साथ हुई बैठक को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। दैनिक जागरण ने मोदी के भाषण को अपना शीर्षक बनाया है और इसमें लिखा है जोखिम लो और निवेश बढ़ाओ। वहीं अमर उजाला ने भी ठीक यही शीर्षक लगाया है। NBT की बात करें तो उन्होंने प्रधानमंत्री के ही शीर्षक को अपना शीर्षक बनाया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि रिस्क लें और निवेश बढ़ाएं। वहीं अगर NBT की बात करें तो उन्होंने भी इसी खबर को लिया है जिसमें उन्होंने लिखा है कांग्रेस पार्टी के एक फैसले से जुड़े अपनी खबर को उन्होंने मुख्य खबर बनाया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि राहुल के हाथों में जिम्मा अभी नहीं, इसमें पार्टी के संगठनात्मक जो चुनाव होने थे उसको टालने और सोनिया गांधी के अध्यक्ष बने रहने की बात खबर प्रकाशित की गई है। वहीं अन्य खबरों की बात करें तो सऊदी अरब में के जो हमले हैं उसमें 20 भारतीयों की मौत और विदेशी दौरे पर अधिक जाने पर नौकरी से हाथ धो बैठेंगे बाबू, और NGT ने पूछा कि दिल्ली की बसें इतना शोर क्यों करती हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया अमल चौधरी अखबारों की समीक्षा के लिए, और अब एक नज़र डालते हैं कि आज दुनिया में क्या क्या हो रहा है।
भारतीय सीमा सुरक्षा बल और पाकिस्तान रेंजर्स की एक बैठक बुधवार को अमृतसर में हो रही है। एक 16 सदस्यीय पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल वहां BSF की टीम से मिलेगा। 13 सितंबर तक जारी रहने वाली इस बैठक में संघर्ष विराम का उल्लंघन, तस्करी और कच्छ केरन में घुसपैठ जैसे मुद्दों पर बातचीत होगी। निजी FM चैनलों के तीसरे फेस के लिए होने वाली नीलामी का दूसरा हिस्सा बुधवार को आयोजित किया जाएगा। पहले हिस्से में कंपनियों ने चैनलों को खरीदने के लिए बोली लगाई थी, वहीं दूसरे दौर में वो अपने चैनलों के लिए फ्रीक्वेंसी चुन सकेंगे। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एप्पल का iPhone 6s आज लॉन्च होगा। अटकलें लगाई जा रही हैं कि इसके मुख्य कैमरे को 8 से 12 मेगापिक्सल का कर दिया जाएगा, वहीं आगे के कैमरे को भी 5 मेगापिक्सल तक किए जाने की उम्मीद है जिससे कि यूजर बेहतर सेल्फी ले सकेंगे। माना जा रहा है कि इसकी इंटरनल मेमोरी के अनुसार इसके दाम करीब 52,000 रुपए से 68,000 रुपए तक हो सकते हैं। यूरोपीय संघ आयोग के अध्यक्ष जीन क्लॉड जंकर यूरोपीय देशों में शरण के लिए आ रहे शरणार्थियों पर नई रणनीति की रूपरेखा तैयार करेंगे, साथ ही अनचाहे शरणार्थियों के निर्वासन की प्रक्रिया को गति देने पर भी चर्चा करेंगे। सूडान के विदेश मंत्री इब्राहिम घंडोर और विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री बेंजामिन बर्नाबा रूस के विदेश मंत्री सर्गी लावरोव के साथ बैठक करेंगे। 3 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में तीनों मंत्री दोनों देशों के संबंधों को बेहतर करने पर चर्चा करेंगे।
अब देखते हैं भारत में 10 लाख प्रति 10 लाख लोग में महज 3 से 4 लोग ही ऐसे होते हैं जो अंगदान करते हैं। अगर इसकी तुलना की जाए स्पेन, इटली, क्रोशिया और ऑस्ट्रिया जैसे छोटे देशों में भी, तो वहाँ अंगदान करने वाले लोगों की संख्या कहीं ज़्यादा है। इस मुल्क में लाखों मरीज़ यानी कि भारत में लाखों मरीज़ अंग प्रत्यारोपण के इंतज़ार करते हुए दम तोड़ देते हैं। माफ़ कीजिएगा, अंगदान पर BBC की खास सीरीज़ की पहली कड़ी में सलमान रावी ने यह जानने की कोशिश की कि भारत में आखिर अंगदान में लोगों की दिलचस्पी क्यों नहीं है।
पूरी दुनिया में 2 तरह से अंगदान किए जाते हैं, एक जीवित व्यक्ति द्वारा और दूसरा ब्रेन डेड घोषित किए गए मरीज द्वारा। जीवित व्यक्ति अपने लीवर और आंतों के अंश और 2 में से 1 गुर्दे को दान में दे सकता है, और वो भी सिर्फ अपने खून के रिश्ते वालों को ही। अंगदान करने का संकल्प सिर्फ ब्रेन डेड घोषित किए गए मरीजों के मामले में ही होता है। भारत में स्थिति चिंताजनक इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि अगर वो अंगदान करना चाहते हैं तो कहाँ जाएं और किससे संपर्क करें। लोगों को प्रेरित करने और जागरूकता फैलाने वाली संस्था मोहन फाउंडेशन की निदेशक पल्लवी कुमार कहती हैं कि भारत में अंगदान करने वाले नहीं के बराबर ही हैं।
पर ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए और डिमांड और सप्लाई के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, ज़रूरत और उसके अगेंस्ट क्या हम दे पा रहे हैं देखा जाए, तो हम काफ़ी गैप है और काफ़ी पिछड़े हुए हैं।
कितने पर्संस पर मिलियन है?
तो किसी भी कंट्री का जो ऑर्गन डोनेशन रेट है वो हम मेजर करते हैं एज अ नंबर ऑफ डोनर्स इन अ मिलियन पॉपुलेशन, जो लोग जिन्होंने एक्चुअली डोनेट कर पाए इन अ मिलियन पॉपुलेशन। हमारी कंट्री है 0.34, नॉट इवन 1%, नॉट इवन 1 इंसान इन अ मिलियन डोनर, मिलियन पीपल इज अ डोनर इन आर कंट्री।
और जो अच्छी कंट्रीज हैं टॉप की वो वहाँ पर क्या रेशियो?
जो सबसे ज़्यादा जो कंट्री जिसने सबसे ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं ऑर्गन डोनेशन में वो स्पेन है, और उनका ऑर्गन डोनेशन रेट अभी 35 per million पॉपुलेशन है। क्रोएशिया एक बहुत छोटी सी कंट्री है, वो आई थिंक कुछ हाल पिछले कुछ सालों में उन्होंने बहुत अच्छा किया है एंड काफ़ी पास पहुंच गए स्पेन के। आई थिंक उनका
पल्लवी कुमार कहती हैं कि आज भी लोगों को पता नहीं है कि ब्रेन डेड किसे कहते हैं, इसके लिए अंगदान में काफ़ी अड़चने आ रही हैं।
ब्रेन डेड एक कॉमन टर्मिनोलॉजी नहीं है, हम लोग की अंडरस्टैंडिंग डेथ की क्या है, एक जनरल इंसान की अंडरस्टैंडिंग डेथ की है दिल रुक जाना। तो कैसे फिर उस फैमिली को आपने ये समझाने की कोशिश करी कि दिल तो नहीं रुका है, क्यों नहीं रुका है, क्योंकि वो वेंटिलेटर उसको चला रहा है, पर अगर उसको वेंटिलेटर से हटा देंगे तो वो इंसान मरा हुआ ही है क्योंकि उसका ब्रेन पूरी तरीके से मर चुका है, वो इंसान मेडिकली लीगली एथिकली हर तरीके से मरा हुआ इंसान है पर उसके ऑर्गन जिंदा हैं क्योंकि। तो इस तरह से अगर ठीक से डॉक्टर उसको समझाएं तब तो हमारा बात करना कुछ मायने भी रखता है। अगर उस इंसान को डेथ ही समझ नहीं आई है, क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, दिमाग तो मर गया, अच्छा दिमाग मर गया जिंदा कर दीजिए उसको, दिल तो चल ही रहा है ना, तो फिर फैमिलीज के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। डेथ आफ्टर ऑल इट्स अ वेरी सीरियस अफेयर।
वहीं भारत सरकार के नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन यानी नोटो के निदेशक सौदान सिंह का कहना है कि विभिन्न संस्कृतियों के देश भारत में अंगदान के लिए जागरूकता फैलाना भी एक बड़ी चुनौती है।
ये अड़चन है क्योंकि ये ऐसे मिथ्स हैं, ये ऐसी लोगों के अंदर मिसकंसेप्शंस हैं और उसके आधार पर लोग ऐसी अगर आँख निकाल ली गई तो आँख अगले जन्म में हमारी आँख नहीं मिलेगी, एक आँख कम होगी, गुर्दा निकाल लिया गया तो गुर्दा हमारा जो है अगले जन्म में नहीं मिलेगा, और ये सब बहुत सारी मिथ्स हैं।
अंजलि सोढ़ी के भाई को हाल ही में अपने लीवर का प्रतिरोपण करवाना पड़ा और इससे पहले अंजलि को अंगदान के बारे में कुछ भी पता नहीं था।
हम लोग ट्रीटमेंट के लिए जाते थे और एवरी टाइम ग्रेजुअली यू नो लाइक एज अ टाइम वाज पासिंग बाय हिज कंडीशन वाज एब्सोल्युटली डिटोरिएटिंग एंड एवरी टाइम द डॉक्टर वुड से कि नाउ देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर द कैडेवर। उस समय इसकी इम्पोर्टेंस पता चली कि कितना डेस्परेशन था मैं आपको बता नहीं सकती। अभी तो मतलब मैं आपको बोल रही हूँ कि द मोमेंट ही स्टेबलाइज वी ऑल आर प्लानिंग, इनफैक्ट द होल फैमिली, माय हस्बैंड, माय यू वोंट बिलीव इवन माय सन, ही इज देयर, आई मीन वी ऑल आर प्लानिंग टू प्लेज आवर ऑर्गन्स, वी माइट आई थिंक वी गो टू आरएनआर प्लेज आवर ऑर्गन्स देयर।
अंजलि कहती हैं कि सरकार को चाहिए कि वो अपने स्तर से अंगदान करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करें और उन्हें कंसेशंस दें।
एंड सेकेंडली एज आई वाज टेलिंग यू वी शुड गिव सर्टेन इंसेंटिव्स यू नो लाइक फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर द फैमिली ऑफ द डोनर, एग्जेम्पशन इन द टैक्सेशन।
बहरहाल अंगदान के लिए काम करने वाली संस्थाओं और कार्यकर्ताओं को खुशी इस बात की है कि पिछले 2 सालों में भारत में अंगदान के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है और इसी वजह से अंगदान के आंकड़े 2 गुना हो चुके हैं, मगर इन सब के बावजूद भारत में प्रति 10 लाख लोगों में अंगदान करने वाले लोगों की संख्या 1 भी नहीं है। सलमान रावी, BBC दिल्ली।
और अब खेल की खबरें। सानिया मिर्ज़ा और मार्टिना हिंगिस ने US ओपन का क्वार्टर फाइनल जीत लिया है। अमल, ये बताएं कि कैसा रहा मैच, आपने नज़र डाली?
जी फैजल, बिल्कुल, ये एक बार फिर से टेनिस प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर रही कि सानिया मिर्ज़ा और मार्टिना हिंगिस ने चीनी ताइपे की जैन चैन और हाओ चिंग चैन को 7-6 और 6-1 से मात दे दी। हालांकि लोग पहले सेट में 0-5 से ट्रेल कर रहे थे लेकिन उन्होंने एक मजबूत वापसी करते हुए 7-6 से पहला सेट इन्होंने जीत लिया और वहीं लेकिन इसके बाद उन्होंने कोई मौका नहीं दिया अपने विरोधियों को और दूसरा सेट 6-1 से जीतने में कामयाब रहीं और इनको दूसरा सेट जीतने में केवल 35 मिनट ही लगे। और अगर इनकी से पहले वाले हम लोग मैच की अगर बात करें तो उन्होंने
काफ़ी अच्छा
प्रदर्शन रहा है इनका और जैसे कि ये टॉप सीड हैं इस वाले इनको US ओपन में, इस बार इनका जो डबल्स का जो है सानिया मिर्ज़ा मार्टिना हिंगिस इसको इनको टॉप सीड दिया गया है इस बार के US ओपन में और इससे पहले के मैच में भी इन्होंने 6-3 और 6-0 से जीत दर्ज की थी। फैजल,
बहुत बहुत शुक्रिया। और अब प्रोग्राम खत्म करने से पहले एक बार फिर से सुनते हैं विश्व समाचार।
BBC समाचार। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी ने हंगरी को चेताया है कि इस सप्ताह के अंत तक वहां ग्रीस और सर्बिया से 40,000 शरणार्थी आ सकते हैं। एजेंसी के स्थानीय कोऑर्डिनेटर विंसेंट कोचिल ने हंगरी के अधिकारियों को पंजीकरण और स्वीकृति प्रक्रियाओं को बेहतर करने को कहा है। तुर्की में प्रदर्शनकारियों ने मुख्य कुर्द पार्टी समर्थक HDP के मुख्य कार्यालय पर हमला किया। अंकारा में मौजूद पार्टी की बिल्डिंग को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। कीनिया की राजधानी नैरोबी में स्थित एक शॉपिंग मॉल में एक व्यक्ति ने विस्फोटक से भरे बैग के साथ घुसने की कोशिश की। हालांकि वहां मौजूद सुरक्षा गार्डों ने उन्हें पकड़ लिया और उसमें मौजूद यंत्र को पुलिस ने निष्क्रिय कर दिया। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान में होने से इनकार किया है। रेडियो पाकिस्तान के अनुसार उन्होंने मंगलवार को इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत में कहा कि भारत कोई भी दुस्साहस करने की हिमाकत ना करे। बीबीसी समाचार।
तकनीकी पक्ष संभाला था अजीत सारथी ने। विश्व भारती में थोड़ी देर में फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।